الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اتنے فضائل ہیں اور اتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ بندہ بیان کرتا چلا جائے، وقت تو ختم ہو سکتا ہے مگر درود پاک کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک کاغذ قلم لیں اور لکھیں کہ یار مجھے دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا کیا چاہیے، آخرت میں کیا چاہیے، کبھی لکھیے۔ اب میں کچھ آپ کو روایتوں کا خلاصہ، یوں سمجھیے کہ بہت ساری حدیثوں کا عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچ جائیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے نبی پاک کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہن کچھ باقی رہ گیا ہے، اب مجھے بتائیے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کچھ باقی رہ گیا جو آپ کو زندگی میں چاہیے، مرتے وقت چاہیے، قیامت کے دن چاہیے، روزی میں برکت ہو، ٹینشن دور ہو جائیں، عزتیں بڑھتی رہیں، ہیں سکھ کی زندگی رہے، بار بار مدینے جاتا رہوں، پیارے آقا کا دیدار بھی ملے، مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار ملے، جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، کچھ اور چاہیے؟ سب ہو گیا نا، یہ ہے درود پاک۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، تقریباً ہر جملے کے پیچھے کوئی روایت یا کوئی حدیث ہے، یہ سب فضیلتیں نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں، یعنی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، یعنی ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے نہیں ہیں، بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، نہ کریں ایسا، درود پاک کو تھام لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی پرابلم سالو ہوگی، آپ ریلیکس فیل کریں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات، اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا با عزت بری ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو، آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو، تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ दे आर नॉट एबल टू काउंट अवर ओन हेयर, अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है, हजारों बकरियां पालता था, वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे, मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि जो नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदि नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्मे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी, ये जो काहिन होते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टोना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरई बुग्ज़ो कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में जैसे बुग्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जरा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं और मेरी बख्शिश ना हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मगफिरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें तौबा करनी है, हम सब ने दुनिया से जाना है, हम सब ने मरना है, कब्रिस्तान भी जाना सुन्नत है ना, नहीं गए तो अभी आप जाइएगा। ये कब्रिस्तान जाना भी हमारे लिए इबरत का सामान है, इसीलिए भेजा गया। नबी पाक फरमाते हैं कि पहले मैं तुम्हें मना करता था, हदीस का खुलासा है कि पहले मैं तुम्हें मना करता था कब्रिस्तान जाने से, अब जाया करो और वहां जाके इबरत लिया करो, कब्रें जाकर देखें तो सही, कुछ तो ख्याल करें कि यही मेरी दो गज की जमीन, मेरा भी ठिकाना है। इतने बड़े घर हो, बड़ा हवादार घर हो, वेस्ट ओपन हो, एयर कंडीशन हो, नरम बिस्तर हो, यार लाइट जाए तो यूपीएस भी होना चाहिए, स्टैंड बाय जनरेटर भी होना चाहिए, एक रात बगैर पंखे के जिसको नींद नहीं आती, कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो क्या बनेगा, कब्रिस्तान जाकर देखे तो सही। आपको पता है आज क्लिफ्टन के इलाके में आओ, बिल्डिंग देख के अंदाजा हो जाता है सारे पैसे वाले रहते हैं, भाई 10 करोड़ का फ्लैट है। इधर बंगले वाले रहते हैं, ये बड़े इलाके वाले लोग हैं। गरीब इलाके में जाओ तो घर देखकर पता चल जाता है कि मकीन गरीब है। दुनिया में मकान देखकर मकीन का अंदाजा हो जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर अंदाजा नहीं होता। हर कब्र की अलग कहानी है, हर कब्र की अलग स्टोरी है। हदीस पाक में फरमाया कब्र दो तरह की होती है, देर इज़ नो थर्ड कैटेगरी। हमारी दुनिया में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, फ्लैट अलग होते हैं, बिल्डिंगें अलग होती हैं, बंगलों अलग होते हैं, मकान अलग होते हैं, झोपड़ियाँ अलग होती हैं, रोड पे सोने वाले अलग होते हैं। हमारे शायद 50-60 कैटेगरी बन जाएंगी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, VIP क्लास, बहुत सारी क्लासें लोग मना रहे होते हैं। देर इज़ ओनली 2 क्लासेज इन द ग्रेवयार्ड। सुनो गौर से, कब्रिस्तान जाते हो ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र दो तरह की होती है। तीसरी कैटेगरी नबी पाक ने बयान नहीं फरमाई, क्या फरमाया, फरमाया या तो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। अरबी में हदीस सुन लो, इन नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। कितना प्यारा जुमला है, रियादिल जन्ना सुना ना, जब मदीने पाक में इस हदीस में भी इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया, इन नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या देयर इज सेकंड ऑप्शन फरमाया, औ हुफ्रतुम मिन हुफ्रिन नार, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। एक सवाल करना चाहता हूं, सच्चा सच्चा जवाब देना, मुझे नहीं देना, अपने आप को देना है। मैं भी अपने आप से सवाल करता हूं, आप सब भी अपने आप से सवाल करें, और सच्चा ईमानदारी वाला जवाब। आज मेरी मौत हो जाए, हो तो सकती है ना, आज तो बल्कि रात भी वही है जिसमें लिखा जाएगा कि इस रात किसने जाना है। पता है मलकुल मौत को एक सहीफा दे दिया जाएगा कि इस रात इस बंदे की रूह कब्ज़ करनी है, मकाम, टाइम, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। हमें नहीं पता, मैं हो सकता है आज रात आखिरी हो, कल आखिरी हो, चले आज मेरा इंतकाल हो गया। सच्चा जवाब देना, घुमाना फिरा अल्लाह की बारगाह में कोई किसी को घुमा फिरा नहीं सकता, हम अपने आप को घुमा सकते हैं, उधर नहीं, वहां तो बात सारी क्लियर है ना, दूध का दूध, पानी का पानी है। सवाल यह कि अगर आज मर गया, कब्र में गया, जैसी जिंदगी गुजारी है, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोजख का घड़ा बनेगी, अपने आप से पूछ लो। अगर तो दिल से जवाब आ रहा है कि हाँ यार, नमाज़ें पाबंदी से हैं, गुनाह की आदत नहीं है, तिलावत कुरान भी है, मेरी आंखें भी गुनाह नहीं करती हैं, मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, हराम रोज़ी भी नहीं कमाता हूँ, हैं बेहयाई भी नहीं करता हूँ, माँ बाप भी मेरे राज़ी हैं, अल्लाह करे ऐसा कोई अल्लाह का वली यहाँ बैठा हो जिसके दिल से सच्ची आवाज़ आ जाए कि जनाब अपरा तो बेड़ा पार है। बाकी हम जैसे गुनाहगारों को तो डर ही लगता है कि यार गुनाह ही ज़्यादा हैं, नेकियां अव्वल तो की थोड़ी हैं, और जो की हैं उसका पता भी नहीं कबूल भी हुई कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम है, रियाकारी अलग है, दिखलावा अलग है, बुनावटें अलग हैं, हैं पता नहीं कितने उसमें दुनिया के मकासद हमारी नेकियों में शामिल होते हैं। तो आप मुझे बताओ फिर तैयारी कब करेंगे? दो ही कैटेगरीज है ना, या तो जन्नत का बाग है या दोजख का घड़ा। तो जन्नत का बाग बनाने की तैयारी कब करनी है हमने? हमें नहीं पता अब कितने दिन रह गए हैं। पिछली शबे बरात में कई लोग हमारे साथ थे मगर आज वो हमारे साथ नहीं हैं। हो सकता है अगली शबे बरात मस्जिद में इज्तिमा तो होगा मगर हम ना हों। बातें करें लोग, यार पिछली बार तो आया था, अगर इस बार नहीं है कहाँ है? कब्र में है। क्या करेंगे कब्र में? कब्रिस्तान जाते हैं ना, एक और चीज़ देखा करें। कभी कब्र में तिजोरी देखी है? कोई कोई कफन में जेब देखा हो? न तिजोरी है न जेब है। जिस माल को जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिया वो तो जाना ही नहीं कब्र में। तो जो कब्र में जाएगा वो क्या जाएगा, ये समझना जरूरी है। आपको पता है जब मेरा और आपका इंतकाल होगा ना, रिवायतों में आता है मरने के बाद रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। पता है फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। एक्चुअल वही है जो आमाल हम आगे भेजेंगे, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। शबे बरात तो रियलाइज कर लो कि आमाल जमा करने, माल ठीक है इतना जमा कर लो जितनी दुनिया गुजर जाएगी मगर ये माल इधर ही रह जाएगा। और फिर कैसे मौत और अजाब कैसे आता है, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। एक शख्स था, बादशाह था, बड़ा अजीब उसने वसीयत की अपने बेटों से, मैं मर जाऊं ना तो मुझे दफन ना करना, मुझे एक लोहे का संदूक बनाना, लोहे के मेरा जो ताबूत है वो लोहे का बनाना, उस ताबूत को एक लोहे के संदूक में डाल देना और उसको छत के साथ लटका देना, दफन नहीं करना। बच्चों ने कहा ये कैसी वसीयत कर रहे हैं आप बादशाह सलामत? कहता मैं ये वसीयत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कब्र में जाऊँ ही ना, जब कब्र में जाऊँगा नहीं तो अजाब भी नहीं होगा। हैं उसकी अपनी मंतिक थी। तो मरा तो बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, लोहे का ताबूत बनाया, उसको ताला लगाया, उसको लोहे के संदूक में डाला, उसको भी ताला लगाया, फिर जंजीर से उसको लटका दिया छत के साथ। तो कहते हैं जब ये सब हो गया तो अभी कमरा बंद किया, रात हुई तो कमरे से आवाज़ें आने लगी, सब परेशान के ताबूत भी बंद, उस पर भी ताला, संदूक पर भी ताला, वो तो लटका हुआ पर लेकिन ऊपर से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही। डरते डरते संदूक खोला, ताबूत खोला तो देखकर हैरान रह गए कि उस ताबूत में उस बादशाह की लाश के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है, उसके चेहरे को काट रहा है, कोई जगह नहीं थी, कोई सुराख नहीं था, वो कैसे पहुंचा अंदर, सब हैरान। अब जनाब बड़ी मुश्किल से सांप को निकाला, उसको मारा, फिर संदूक को बंद किया, फिर लटका दिया, जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अगली रात फिर कमरे से आवाज़ें आने लगी, फिर जाके जब संदूक खोला, ताबूत खोला तो उससे बड़ा सांप उसके संदूक में मौजूद था जो उसको काट रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उस सांप को बाहर निकाला, सांप को मारा, फिर ताला लगाया, फिर लटका दिया। अगली रात फिर आवाज़ें, जब देखा तो पता चला कि अब तो अंदर आग भड़क रही है। अब बच्चों को समझ आ गई कि हम कुछ भी कर लें ये अजाब ही है, इससे छुटकारा नहीं है। वो बादशाह की लाश को निकाला और कब्र में दफना दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये समझनी है बात। हो रही है उम्र बिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। बर्फ वाले को बेचते हुए देखा है? हैं बर्फ जिसके हाथ में हो उसको बड़ी टेंशन होती है। एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने जिंदगी का राज एक बर्फ वाले से सीखा। एक बर्फ वाला था, अब तो बर्फ कम बिकती है मगर पहले, आज से कुछ साल पहले तो बड़ी बिकती थी, रमजानों में अब भी बिकती होगी। तो वो क्या कहता है, ऐ वो लोगों उस पर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा है, जल्दी खरीद लो वरना क्या होगा, पिघल जाएगा। कहते मैंने जुमला सुना मुझे बात समझ आ गई कि मेरी जिंदगी भी तो यही है ना। हम सब की जिंदगी में कोया एक बर्फ की, हमें सबको एक ब्लॉक दे दिया गया, बर्फ पिघल रही है, कभी भी खत्म हो जाएगी, किसी की कल खत्म होनी है, किसी की महीने में खत्म हो जाएगी। तो शायर क्या खूब बात समझा रहे हैं, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। सांस है एक राह रुए मुल्के अदम, दफअतन एक रोज ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, उम्र एक दिन ये गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है जो करना है। हाँ लोग कहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरे ये तो जिंदगी मौज करने के लिए मिली है, मैं तो अभी बहुत सारे प्लान हैं, मेरे बड़े इरादे हैं। शायर कहता है कर ले जो करना है, आखिर मौत है, मरना पड़ेगा और मरने के बाद अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। ये जो आलम में बरजख है ना, हमें नजर नहीं आता। आप कहते हैं हम तो कब्रस्तान जाते हैं, कोई चीखो पुकार तो आती नहीं, अजाब की आवाज, ये अल्लाह के राज होते हैं, अल्लाह किसी किसी को दिखा देता है। कुरान क्या कहता है, वमिन वराइहिम बरजखुन इला यौम युबअसून, और उनके आगे एक रुकावट है उस दिन तक जिस दिन वो उठाए जाएंगे। अब ये मौत से कयामत तक का जो अरसा है ना, जब हम मरेंगे ना और कयामत तक, ये मट्टी के नीचे गुजरा तो वो कब्र है, किसी ने किसी को शेर ने खा लिया तो उस शेर का पेट जो है ना वो उसके लिए कब्र होगी, कोई समुंदर में डूब गया तो वही कब्र समझी जाएगी। थोड़े दिनों पुरानी बात है ना, $2.5 लाख देकर गए थे ना समुंदर के अंदर, हैं कितने पैसे खर्च किए, करोड़ों रुपए, हजारों फिट नीचे गए क्योंकि वहां मौत लिखी थी। यानी करोड़ों रुपए खर्च करके उस जगह पहुंचे कि जहां मौत लिखी होती है, इंसान पहुंचता है वहां पर। हाँ, हमारा वक्त भी डिसाइडेड है, हमारी जगह भी डिसाइडेड है। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्य है कि आपके साथ एक आपका साथी बैठा था, मलकुल मौत आए, हजरत सुलेमान की हवाओं पर भी हुकूमत थी, आपके चरिंदों परिंद पर भी हुकूमत थी, तो मलकुल मौत आए और उस बंदे को बड़ा घूर के देख रहे थे। मलकुल मौत तो चले गए तो हजरत सुलेमान ने कहा कि पता ये कौन थे, कौन थे, मलकुल मौत थे। लगता है हज़रत मेरी रूह कब्ज़ करने आए थे, आपकी तो हवाओं पे हुकूमत है, आप जल्दी से हवा को हुक्म दें मुझे यहाँ से उठाकर हिंद में ले जाए। तो आपने दुआ कर दी, वो बंदे को हवा उठा उड़ा के ले गई। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत फिर आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उस दिन क्यों घूर रहे थे। कहा हज़रत मैं परेशान, मैं इसलिए घूर रहा था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि थोड़ी देर बाद मुझे इस बंदे की रूह हिंद में कब्ज़ करनी है, बंदा आपके पास बैठा है। बात आई समझ, दुआ करके वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ रूह कब्ज की गई। वो जुमला सुनते हो ना, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। हम वहाँ पहुँचेंगे, ये समुंदर के अंदर गए नहीं थे, इनको इनको बुलाया गया था, इनका वक्त पूरा हुआ था। जिन्होंने वाक़या पढ़ा होगा, आज से कुछ दिनों पुरानी बात है, जहाज़ के अंदर किसी की मौत होती है, किसी की जंगल में मौत हो जाती है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें आफियत वाली मौत देना। अल्लाह डूबने वाली, फटने वाली, हैं जानवरों के ज़रिए परखचे उड़ने वाली, बम धमाके वाली मौत नहीं, अल्लाह में ईमान वाली, आफियत वाली, हमारे मुकद्दर में मदीने वाली मौत लिख दे। अल्लाह जब आखिरी वक्त आए हम मदीने पहुंच जाएं, आका के जलवों में, आका के कदमों में, रोज़ा रसूल को देखते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए, इश्क रसूल में रोते हुए हमारा दम निकल जाए। नजम की है खुदा आरजू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। अल्लाह करे ऐसा ऐसा करम हो जाए कि बस हम मदीने में हमारा इंतकाल हो। मगर मरना तो है ना, हम क्यों नहीं सोचते, क्यों तैयारी नहीं कर रहे, किस बात का इंतजार है, ये कब्रिस्तान जाना, ये जनाजे उठना। अच्छा आपको पता है बहुत अहम बात मैं आपने करने जा रहा हूं, ये जो जनाजा है ना, हम तो दुनिया से चले गए ना, जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो कब्र में जाकर तो फरिश्ते आते हैं ना, तो मरने के बाद ये सारे काम भी फरिश्ते कर लेते हैं, गुसल, कफन, दफन, है अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते उठा के ले जाते बंदे को। ये सारा काम पब्लिक से क्यों करवाया गया, कभी सोचा आपने, हैं भाई सवाल जवाब भी फरिश्ते करेंगे, अजाब भी फरिश्ते देंगे, नेमतें भी कब्र में फरिश्ते देंगे, लेकिन ये जो कब्र से पहले के मामला थे ये हमारे हाथ में क्यों दिए गए। ये प्रैक्टिकली पब्लिक को दिखाया जाना है कि देखो गुसल हो रहा है, देखो कफन हो रहा है, ये तुम्हारी हकीकत है, देखो ये मैयत अब अपना हाथ भी नहीं उठा सकती, अपने आप के ऊपर मक्खी बैठे वो भी नहीं उड़ा सकती, और फिर ये कब्र में डाला जा रहा है, फिर कब्र को बंद किया जा रहा है, एक सुराख भी नहीं छोड़ने देते। हम आवाज लगाते हैं भाई जरा इधर भी पत्थर लगाओ, सुराख हो गया नजर आ रहा है। कभी सोचा मैं भी कब्र में जाऊंगा, मेरा ही दोस्त कहेगा भाई ये थोड़ा सा सुराख भी बंद कर दो, किसी को ये ख्याल नहीं आएगा मेरा अकेले क्या बनेगा। हम क्यों नहीं सोचते ये सब मेरे साथ होना, ये प्रैक्टिकली गुसल, कफन, दफन करवाने की एक हिकमत भी है। और याद रखो कफन पहनाना आसान है, कफन पहनना आसान नहीं है, हैं मैयत को गुसल देना आसान है, मगर जिस मैयत को गुसल दिया जा रहा है उस पर सोचो क्या बीतती होगी। कब्र में उतारना आसान है, कब्र में उतरना आसान नहीं है, मगर हमें भी उतरना पड़ेगा। काश ये बात समझ आ जाए और हम गुनाहों से तौबा कर लें, वरना इंसान कहता है बाद में कर लूँगा तौबा, अभी टाइम है यार। मौलाना साहब बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, अभी भी शैतान किसी के कान में बात कर रहा होगा ये मौलाना साहब बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो यार जवान हूँ भाई, बूढ़ा होकर मैं भी अल्लाह अल्लाह करूँगा। ये भी मौलवी साहब जो बातें कर रहे हैं 50 साल के ही हो गए ना, मैं भी 50 साल का होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह कर लूँगा। तो चले भाई आपके पास अगर गारंटी है मुझे बता दें कि आप 50 साल तक जिएंगे, है कोई यहाँ ऐसा जिसके पास 1 साल जिंदा रहने की गारंटी हो, इस मस्जिद में पूरे मजमे में कोई एक बंदा जिसके पास 1 हफ्ता जीने की गारंटी हो। अच्छा कल सुबह तक जिंदा रहने की गारंटी तो होगी आपके पास, वो भी नहीं है। अच्छा इतने अकलमंद तो हैं कि ये पता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपनी आखिरत की तैयारी कीजिए। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दिन नबियों के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगी है। फिर फरमाया, तुम जानते हो तंग जिंदगी क्या है? साहबा किराम ने अर्ज़ की, हुज़ूर अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने उसके बताए से उसका रसूल जाने। तो फरमाया, उससे मुराद कब्र का अजाब है जो काफिर को दिया जाएगा। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कब्र में गैर मुस्लिम पर 99 तनीन मुसल्लत किए जाएंगे। नबी पाक फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो तनीन क्या है? साहबा ने कहा, आप इशाद फरमाया। फरमाया, ये 99 सांप होंगे, उनमें से हर सांप 7 सरों वाला होगा, ये 99 सांप उसे कयामत तक काटते रहेंगे। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। हम मुसलमान ही दुनिया से जाएं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, हमें फिक्र ही नहीं है ईमान की। हम समझते हैं हम मुसलमान हैं तो जनाब बड़ी अच्छी बात है, ईमान वाले हैं, मगर ईमान सलामत रहे उसकी फिक्र कौन करेगा? याद रखिए, इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब ये इस्लाम है, द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। कायनात में सबसे तेज़ी से लोग मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जिस तरह लोग मुसलमान हो रहे हैं, माद अल्लाह इस तरह कोई ईमान से भी खारिज हो सकता है। हमें दुआ करनी है, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखियो। हम क्या दुआ करें? हमारे नबी पाक दुआ फरमाया करते हैं, हमारी तो औकात ही कोई नहीं ना। जिनके सदके ईमान मिला है वो दुआ करते हैं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह के नबी। हम में से किसी ने दुआ की? हम कभी टेंशन में आए? मेरी गाड़ी, अभी किसी की गाड़ी बाहर खड़ी होगी उसको टेंशन होगी, यार नई गाड़ी ली है कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कीमती मोबाइल जेब में हो तो और थोड़ी देर बाद हाथ लगाते हैं, हाँ यार पड़ा हुआ अभी तक निकला नहीं है, इतनी टेंशन है तुम्हें अपने पैसों वाली चीज़ों की। सबसे कीमती चीज़ ईमान है, कभी उसकी टेंशन ली कि अल्लाह मेरा ईमान सलामत रहे, मेरा ईमान छिन ना जाए, मैं मरते वक्त मुसलमान मरूं? हैं बुरे दोस्तों में बैठ रहे हैं, ईमान छिन जाने के बड़े असबाब हैं। शराबियों के साथ बैठते हैं, जुआरियों के साथ बैठते हैं, बेहया लोगों के साथ बैठते हैं, उल्टी सीधी बातें करने वालों के साथ बैठते हैं, ये नहुसत है, ईमान छिन जाने का डर है। जो गुनाहों का आदि होता है उससे ईमान छिन जाता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें उनकी जबान से निकल रही होती हैं। अल्लाह रसूल का मजाक, जन्नत और दोजख का मजाक कॉमेडियन बनाए हुए लोगों ने, हैं आप तो व्यूज़ के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, ना बैठो उनकी सोहबतों में। हैं मुझे एक बात बताएं, अभी 4 साल पहले कोविड आया था ना, कोविड ने सिखाया ना सोशल डिस्टेंस, नहीं यार ये छींक रहा है ऐसे दूर रहो भाई, इसने मास्क पहना जरूर कुछ होगा, इतना डर गए थे। तुम्हें एक बीमारी की वजह से दूर रहना समझ आ गया, जहां रब की लानत बरस रही है उन लोगों से दूर रहना समझ ना आया? आज पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, दोस्त शराब पीते मैं तो बैठता हूँ, वो जुआ खेलते हैं मुझे पता है लेकिन मैं बैठता हूँ, वो बुरी बातें करते हैं मैं नहीं करता, मैं बैठ, क्यों बैठते हो भाई? आपको पता है जहां रब की तरफ से लानत बरस रही है उधर बैठे हुए हो, क्या मुझ पर अजाब इलाही नहीं आ जाएगा? क्यों समझ नहीं आती है? दो और तो चार वाली बातें, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए उस बिल्डिंग में रहते हैं हम, यार नीचे आग लगी है ना ऊपर तो नहीं लगी, पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है, आग जहन्नम की आग लगी हुई आप उधर बैठे हुए हैं। और एक बार और याद रख लें कि जितनी बुराइयां हैं ना, बड़े यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, मेरा ये दावा है आप जाके चेक कर लो, किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी चोर, किसी डाकू, किसी भी बुरे काम करने वाले से एक बार पूछ लो कि भाई ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा नहीं कहेगा कि अम्मी ने सिखाई थी, अब्बू ने सिखाई थी, अब्बू ने कहा बेटा आज तेरी बर्थडे तो ये तेरे को चरस का सिगरेट दे रहा हूँ, किसी की अब्बू अम्मी ने नहीं पिलाया था, किधर से आई सारी आदतें बताओ ना? बुरे दोस्तों से ही आई ना। इसका मतलब दो और दो चार वाली बात है कि बुरी सोहबत ही बंदे को बुरा बनाती है। हम बुरी सोहबत छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, हमने तो दोस्त भी वो बनाए कि नमाज पढ़े तो मजाक उड़ाते हैं हमारा, और मौलवी बन गया किधर जा रहा है भाई, ठीक है जुम्मा पढ़ लेता है बहुत है, हमें वही दोस्त अच्छे लगते हैं, क्यों चाहिए मुझे वो दोस्त चाहिए क्यों? हम क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे बुरे लोगों में बैठकर। हमें अगर वाकई नेक बनना है तो हमें नेक लोगों की सोहबत अपनानी होगी। सिंपल इज दैट। अच्छी सोहबत में आए आपको अच्छाई करने का दिल लगना लग गया, आपका जिक्रुल्लाह का दिल चाह रहा है, आपका दुरूद पाक पढ़ने का दिल चाह रहा है, ये अच्छी सोहबत की बरकत है। बिल्कुल प्रैक्टिकली फार्मूला आ गया ना। तो प्लीज आज कुछ डिसाइड करो यार, आज कुछ तय करो। अगर देखिए आपने वो 6 गुनाहगार 7 गुनाहगार सुने, शराब का आदि नहीं बख्शा जाएगा। अगर मेरा कोई अल्लाह ना करे कोई भाई ऐसा बैठा है मुझे सुन रहा है शराब की आदत है, खुदारा तौबा कर लो, ये कितना बड़ा गुनाह है कि सबे बरात भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन अगर शराबी नहीं बैठा ना कोई यहां पर, शराब के शराबी का दोस्त बैठा होगा, हैं, ऐसी पार्टियों में जाने वाला तो ज़रूर बैठा होगा, मैं क्या करूं दोस्त पीते हैं, हैं क्या करें शादियों, आजकल सुना शादियों में कोल्ड ड्रिंक की तरह शराब पी जाती है, फिर अच्छा सिर्फ शराब नहीं तरह तरह के नशे चल रहे हैं, ड्रग्स चल रहे हैं, मैं नहीं करता दोस्त करते, ना जाएं आप फिर मुब्तला हो जाएंगे, नहीं भी मुब्तला होंगे तो उन पर जो लानत बरस रही है, देखिए ना ये कितने बड़े मुजरिम है कि शबे बारात नहीं बख्शे जाएंगे, फिर जिना का आदि नहीं बख्शा जाएगा, कितना आम हो गया ये बदकारी, इतना आसान हो गया माद अल्लाह। अच्छा लोग कहते हैं पाकिस्तान में जरा जानने वाले फलां मुल्क चलते हैं, फलां मुल्क चलते हैं, क्या क्यों जाते हैं बैरून मुल्क, लेकिन आप सोचिए आप अकेले किसी मुल्क चले भी गए, आपने अपनी पसंद का गुनाह कर भी लिया, रब तो देख रहा है ना, उसको क्या जवाब दोगे, और ये कितना बड़ा गुनाह है कि आज जिना का आदि नहीं बख्शा जाएगा, खुदारा तौबा कर ले, ये पहले आंख बहकती है याद रखिएगा, ये जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में है ना, ये जन्नत में भी ले जा सकता है, ये जहन्नम में भी ले जा सकता है, इसी मोबाइल फोन से वो कुछ देख रहे हैं कि पहले आंख बहकती है फिर दिल बहकता है फिर शर्मगाह बहकती है, तौबा करें, ऐसी बेहया दोस्तों में भी, बेहया लड़कियों से दोस्तियां, उनसे फोन पे बातचीत सारी सारी रात, क्या कर रहे हैं भाई, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह को क्या जवाब, सब बख्शे जाएंगे कहीं हम ना रह जाएं इन चीजों से। अच्छा ये पता है क्यों, क्योंकि सोहबत ही वही है ना, हम बैठते ही उधर जिधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें होती हैं, जिधर जिधर जिक्र ये हो रहा होता है, हम मुझे एक बात बताएं, राइट नाउ किसी के जहन में इस तरह की बेहयाई का ख्याल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, आप अच्छी सोहबत में बैठे हैं, दिस इज द फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं, हम कहते हैं यार मैं कैसे बचूं गुनाहों से, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला कि आप अपनी सोहबतें अच्छी कर लें, अच्छे लोगों में बैठेंगे तो खौफ खुदा दिल में आएगा, गुनाह से दूर होने का जी चाहेगा, फिर कौन सा गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान, ये कितनी कितनी बढ़ गया ये प्रॉब्लम, कितना माँ बाप के सामने जबान चलाते हैं आज का नौजवान, हैं माँ बाप को डांटते हैं, वो दिन दूर हो गए कि माँ बाप बच्चों को डांटें, बच्चे शाउट कर रहे हैं माँ बाप पर, बल्कि ये हाल हो गया कि माँ बाप डर रहे हैं अपने बच्चों से बात करने में, डर रहे हैं कि यार बच्चे को समझाऊंगा तो मुझसे लड़ेगा, बेटी को समझाऊंगी तो माँ कहती बेटी मुझ पर चीखेगी, तुफ है उस औलाद पर कि जिससे माँ बाप डर रहे हैं, याद रखो हदीसे पाक में आता है जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब नाराज, तुमसे सारी दुनिया राजी है, मेरे दोस्त राजी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे जरा मोहल्ले वाले राजी, और माँ बाप नाराज बैठे हैं, बर्बाद हो जाओगे मारे जाओगे, देखे ना कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बारात सब बख्शे जाएंगे, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, अपने माँ बाप को राजी करें, उनकी उनकी रिस्पेक्ट करें, खुदा की कसम उससे बड़ा खुश नसीब कौन है कि शबे बारात भी है और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारा वालिद तुम्हारे पास है, अरे तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए आज, आज की रात तुम्हारी मां तुम्हारे लिए दुआ कर दे, फिर चाहिए क्या तुमको, आज की रात तुम्हारा बाप तुम्हारे पास है, जाओ ना उससे दुआ करवाओ, पूछो उनसे जिनके चले गए मां बाप, कब्रिस्तान जाना पड़ता है उनसे बात करने के लिए, याद रखना मेरे भाइयों मेरे बच्चों जिनके मां बाप है ना, जब चले जाएंगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा ये क्या हस्तियां हैं, दो मौके पर तो मां बाप बड़े याद आते हैं, जब जिंदगी में बंदा कुछ हासिल करता है ना, कोई नया घर ले ले, कोई गाड़ी ले ले, कोई कोई तरक्की हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए ना, फिर माँ बड़ी याद आती है, काश माँ होती ना देखती तो कितना खुश होती है, वालिद होता तो कितना खुश होता कि आज अल्लाह ने मुझे इतनी तरक्की दे दी है, वो शेर है ना, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, फिर बड़ी याद आती है माँ और वालिद के, यार आज अल्लाह ने किधर पहुँचा दिया, मगर माँ ही नहीं है जो दुआएँ देने वाली थी, वो वालिद ही नहीं है जिसकी वजह से इधर पहुँचा हूँ, उसको बता ही नहीं पा रहा, हर खुशी में माँ बाप याद आते हैं, और एक दूसरा मौका होता है जब कोई बड़ा गम आ जाए ना, कोई बड़ी परेशानी आ जाए, कोई बड़ा बड़ा मरहला आ जाए, फिर बड़े याद आते हैं कि काश माँ होती ना, उसके कदमों में सर रखता वो दुआ करती मेरी मुश्किल हल हो जाती, अब माँ है ही नहीं किससे दुआ कराऊँ, वालिद होता ना तो सर पे हाथ रख के कहता, बेशक बूढ़ा था मगर वो एक जुमला कहता था दिल को ठंड पड़ जाती थी कि बेटा घबरा नहीं मैं हूँ, मगर अब ना वो सर पे साया है ना वो दुआओं का दरवाज़ा है, और आज है तुम्हारे पास तो कदर नहीं करते हो, उनके पास बैठते नहीं हो, हैं माँ कहती बेटा टाइम दो, माँ टाइम नहीं है मेरे पास, अब वो मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ दोस्तों में, हैं वो काम कहते मना कर देते हो उनको, माँ बाप की ना फरमानी ना करना, दुनिया में भी बर्बाद हो जाओगे आखिरत में भी बर्बाद, अब सोचिए ना कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बारात माँ बाप का ना फरमान नहीं, अच्छी सिर्फ शबे बारात नहीं शबे कदर की फजीलत जब आप सुनोगे, ये कुछ गुनाह तो ऐसे हैं, ये वो लिस्ट है जो हर बड़ी रात में आप सुनते हो कि फलत सब बख्शे जाएंगे ये नहीं बख्शे जाएंगे, हर लिस्ट में आपको माँ बाप का ना फरमान मिलेगा, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन माँ बाप को राजी नहीं करते, खुदा रहा ऐसा ना करो, चले जाओ उनके पास, उनके पैर चूमो, उनके हाथ चूमो, उनसे माफ़ी मांगो, उनको कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे राज़ी रहना, आप ज़रा सोचो ये कितनी कमाल की हस्तियां हैं हदीस पाक में आता है जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, सिर्फ देखे, जरा सुनना हदीस को, मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। साहबी ने अर्ज की, हुजूर व इन नजरा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे? अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाहु अकबर व अतियब, कोई 100 बार देखे, इसका मतलब ये हुआ कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अब मेरा सवाल है आपसे, सिर्फ देखने पर हज का सवाब है, खिदमत पर सवाब कितना होगा, पैर दबाने पर सवाब कितना होगा, दवाई लाने पर सवाब कितना होगा, व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा, अगर उनकी किसी वजह से मैं कोई उनकी खिदमत कर रहा हूँ तो कितना सवाब होगा यार, देखने पर हज का सवाब। मगर आज तो जब खिदमत की बारी आती है तो बच्चा जी चुराता है। मैं सही बताऊँ, लकी है वो औलाद जिनको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल गया, बुढ़ापे में मिले और खिदमत का मौका मिला। कई माँ बाप ऐसे हैं यकीन करो जिन्होंने खिदमत का मौका ही नहीं दिया, हमारी खिदमत करते करते ही चले गए, हमारी तो बारी ही नहीं आने दी, वो हमारी खिदमत करते रहे और चले गए। अगर तुम्हारी बारी आई है ना, वो बीमार हैं, तुम्हें दवाई दिलाने का मौका मिल रहा है, उनकी उनकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है, उन्हें टाइम देने का मौका मिल, तुम लकी हो, तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता रब ने खोल दिया। इसको सादत समझना, बोझ ना समझना। मगर आज हाल यह है कि बेटा बाप से कहता है, अबू ये मेरा है तुम्हारा नहीं है, मैंने कमाया है, आप तो नौकरी करते थे, आपके पास था क्या, मैंने सब कुछ किया, ये घर मैंने बनाया है। तौबा तौबा तौबा, ये अंदाज रखोगे माँ बाप के साथ? हैं, सोचो जब मैं और आप पैदा हुए थे ना, कपड़े नहीं थे जिस्म पर, बाप कह देता ना ये तेरा है ये मेरा है तो नंगे ही रह जाते हैं। लिबास पहनाया मेरे बाप ने, हैं, उंगली पकड़कर चलाया, खिलाया, तालीम दिलाई, तरबियत की, सब दुनिया में दिया। मेरे बाप ने कभी नहीं कहा ये मेरा है, मेरी माँ ने कभी, अरे उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पीछे रखी, हमारी ख्वाहिशें पूरी की, शायद अपने लिए लिबास नहीं खरीदा, हमारे लिए लिबास खरीदा, अपने लिए जूते नहीं खरीदे होंगे, हमारी जिद पर हमें नए नए जूते दिलाए और आज कहते हो मेरा है। कभी मत कहना। देखो एक बात याद रखो, ये जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये आपसे कुछ नहीं लेते हैं, आप इनको सिर्फ ये एहसास दिलाओ कि सब आपका है, मेरा जो कुछ है आपका है, मैं खुद आपका हूं, ये लेके थोड़ी चले जाएंगे यार। वो कहते ना कि जिस बाप ने जिस माँ ने तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पाला, आज बुढ़ापे में उन्हें बादशाह जैसा तो रख लो यार। मगर आज भी माँ बाप को गुलाम रखा हुआ है घर में, उनको ये एहसास तो दिलाओ, कभी तो कहो अपने वालिद से कि अबू जो मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हम माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से नहीं करते। हमें लगता है मेरी माँ बड़ी मुझसे मोहब्बत करती है। अरे तुम्हारी भूल है, ये माँ ने जो कुछ मुझे आज तक दिया, किसने ला कर दिया मेरी माँ को, जो कुछ मुझे आज तक मिला है वो मेरे वालिद की बरकत से। वो कहता नहीं है बाप, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। अच्छा, वालिद की अहमियत का अंदाजा जब होता है जब हम खुद वालिद बनते हैं, फिर समझ आती है यार, बच्चे को जब रोकते, हमारा अबू सही रोकते थे हमें, हैं, ये मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं प्यार करूंगी, आप डांटिएगा, आप जरा सख्ती रखिएगा। हमें लगता है अब वो हमसे सख्ती करते हैं, अब हमसे प्यार नहीं करते। अरे सबसे ज्यादा प्यार ही तुम्हारा तुमसे बाप करता है, ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है, याद रखना प्यारे इस्लामी भाइयों। कोई दुनिया में ये नहीं चाहता कि ये बंदा मुझसे आगे बढ़ जाए, कभी भी कोई नहीं चाहता। ये वालिद है दुनिया का वाहिद रिश्ता जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाए, इज्जत में भी आगे बढ़े, दौलत में भी आगे बढ़े, शोहरत में भी आगे बढ़े, मकाम भी मेरे बेटे का आगे बढ़ जाए। ये वो रिश्ता है, ये ऐसा प्यार है वालिद और बेटे का। तो माँ बाप की कदर करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जिसके पास माँ बाप है और नाराज हैं उन्हें राजी कर लेना। कभी बूढ़े हो जाते हैं चिड़चिड़े, हो सकता है आपको कुछ सुना दें, डांट दें, नहीं यार कोई बात नहीं, बहुत कुछ दिया है इन्होंने, बच्चे हो गए। जिंदगी एक साइकिल है, ये जिंदगी का पता है सफर कैसे शुरू होता है? हम जब छोटे थे ना, हम क्रॉल करते थे, रेंगते थे, फिर उंगली पकड़कर चलना शुरू हुए, फिर इंस्टॉलर पर हमारे अम्मी अब्बू ने वो छोटी सी बच्चा गाड़ी पे चलाया है, फिर हम चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, फिर बड़े हो गए 50, 55, 60 के बाद, फिर स्टिक आती है हाथ में, है, फिर व्हील चेयर आती है, और एक वक्त आता है फिर हम जमीन पर चले जाते हैं। तो समझ लो कि ये पूरा एक सर्कल है। जो 60 साल का बूढ़ा है ना, वो 6 साल के बच्चे के बराबर है। 6 साल का बच्चा बुरा लगता है आपको, बार बार कोई बात कहे, जिद करे, आपसे लड़े, आप मुस्कुराते हैं, बच्चा लड़ रहा होता है मुस्कुरा, क्योंकि बच्चा है। आप 60 साल के बूढ़े को पहले 6 साल का बच्चा समझ लो, फिर आपको ना अबू की कोई बात बुरी लगेगी, ना उनका डांटना बुरा लगेगा, ना उनका जिद करना बुरा लगेगा, ना बार बार रिपीट करना बुरा लगेगा, ना उनको आप उनका कम सुनना बुरा लगेगा। भाई 6 साल का बच्चा भी नहीं समझता, 60 साल का बूढ़ा भी नहीं समझता, 70 साल का हो जाए समझ लो 5 साल का बच्चा हो गया, एक एक साल कम करते जाओ। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बड़ा आसान दे रहा हूं मैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना बूढ़े लोगों को, आप इंजॉय करोगे, डांट रहे होंगे आपको बुरा नहीं लगेगा। लोग लड़ रहे होते हैं बूढ़े माँ से, अबू डांटते हैं, भाई डांट नहीं रहे, उनको समझ ही नहीं पड़ रही इस वक्त, आप उनकी खिदमत करो, मौका मिला है। तो ऐ मेरे बच्चों, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। बातें तो बहुत सारी हैं, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। अब ये भी बड़ी बीमारी है, कई खवातीन मुझे सुन रही होंगी, मेरी बहनें, खुदा रहा ये चुगलखोरी उनमें बहुत ज़्यादा है या मर्दों में भी होती है, बड़ा इन्जॉय करते हैं लोग। चुगलखोरी क्या है? इधर की बात उधर पहुँचाना। पता चला तेरा भाई ये कह रहा था, वो तेरा दोस्त ये कह रहा था, बड़ा मज़ा आता है उसकी बात पहुँचाने में, ताकि लड़ाई हो जाए, जुदाई हो जाए। आपको पता ये इतना बड़ा गुनाह है कि आज की रात वो नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और अजीब बात बताऊँ कि अल्लाह करीम को ये कितना महबूब है कि बंदे मिल कर रहे हैं। झूठ कबीरा गुनाह है ना, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मगर अगर दो मुसलमानों में लड़ाई हो गई है, मियां बीवी में लड़ाई हो गई है, तो उनको जोड़ने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त दी गई कि किसी तरह इनकी जो है ना मोहब्बत बढ़ा दो, प्यार करा दो, दोस्ती करा दो। झूठ भी बोलना पड़े कि भाई तेरे लिए तो बड़ी तारीफ करता है यार, तेरा भाई तो तेरी बड़ी माशाल्लाह वाह वाह करता है। वो नहीं करता फिर भी जाके बताओ ताकि दिल मिल जाए। इसकी कुछ शरई वो है, तफसील है, लेकिन आप जो समझाना चाह रहा हूँ अकलमंद ज़रा समझिएगा। जिस मुसलमान की लड़ाई को जोड़ने के लिए झूठ की इजाज़त दे दी गई, जो जाके लड़ाई करवाता है उसका क्या हाल होगा? वो अल्लाह की बारगाह में कितना नापसंद है। अच्छा झूठ बोल के लड़ाई कराते, झूठ बोल के दोस्ती कराने की बजाय झूठ बोल के लड़ाई करवाते, घर टुड़वा देते हैं, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग जो चुगलखोरी करते हैं। आपको अगर मिसाल के तौर पे किसी ने किसी की बुराई करी दी तो आप पर कब वाजिब है उसको जाके बताएं कि भाई फलाने ये बताया था? नहीं, हम तो फौरन कहते हैं अब मजा आएगा, बताऊंगा, लड़ाई करवाऊंगा। तौबा 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 ना करें। मुसलमानों में जोड़ पैदा करें, प्यार पैदा करें। तो हमें तोड़ने के लिए नहीं आए, हम जोड़ने के लिए आए हैं। थोड़ी सी जिंदगी है यार, मोहब्बत प्यार से जिए। और आप भी छोटी छोटी बातें, आखिरी में बता दूं कि रिश्तेदारी काटने वाला ये भी आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। फला चाचा के घर नहीं जाएंगे, फला मामू के घर नहीं जाएंगे, फला भाई से बात नहीं। क्यों नहीं भाई? छोटी सी बात पर आपने लड़ाई की हुई है, आज माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, उससे दोस्ती कर लें और रिश्तेदारियाँ ना काटें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, मगर अर्ज़ यही करना है, ये रात बड़ी मुबारक रात है। गुनाहों से तौबा करें, ज़िंदगी में बदलाव लाएँ, अच्छी सोहबतें अपनाएं, बुरी सोहबतों से अब अल्लाह से वादा करें कि अब जो लाइफ है ना वो मैं अच्छी गुजारूंगा। अल्लाह मुझे महरूम मत कर देना, तू करोड़ों को बख्शेगा। अल्लाह मैं रह ना जाऊं, मैं भी तेरा बंदा हूं, मैं मानता हूं गुनाहगार हूं, मानता हूं खताकार हूं, मैं उन मुजरिमों की लिस्ट में भी हूं, मगर तू तो करीम है मालिक, मैं वादा ज़रूर करता हूं कि अब कोशिश करूंगा कि अब वो गुनाह नहीं करूंगा। मेरे अल्लाह आज मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह से दोस्ती कर लो, आ जाओ। और दावत इस्लामी का माहौल है जो हमें गुनाहों से बचाकर आखिरत की याद दिलाता है, इस माहौल से वाबस्ता रहें। हर जुमेरात को इस तरह के बयान होते हैं, जिक्र होते हैं, दुआ होती है, मगरिब से इशा बयान होता है, अब इसमें आया करें। हम तो बड़े लकी हैं, हमारे पास मदनी चैनल मौजूद है, जब मौका मिले घर पे मदनी चैनल देखें, ऐसे बयानात सुने, अपने घर वालों के साथ बैठ कर सुने, इंशाल्लाह सबके दिलों पर असर होगा। जो घर की खवातीन हैं उनको इस्लामी बहनों के इज्तिमा में भेजें। दावत इस्लामी का तो पूरा सिस्टम है ना, आप उसका साथ दें। और आखिरी अर्ज़ ये है कि शब बारात माशाल्लाह जो है वो मरहूमीन को इसाले सवाब करने की भी रात है। इस रात मरहूमीन की जो रूहें होती हैं, हमारे जो रिश्तेदार चले गए दुनिया से, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इसाले सवाब मिलेगा, तो उनको खूब इसाले सवाब भी करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।